नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 12। अध्याय का नाम है परीक्षित महाराज ने किस प्रकार कलयुग का सत्कार किया। मेरे पीछे बोलिए। भद्रास्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरां कुरुं किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जंग्रहे बलिं। आप लोग कृपा करके शांत रहें। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्रास्व केतुमाल भारत उत्तर कुरु किम पुरुष आदि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन स्थानों को समझा रहे हैं जिन स्थानों में परीक्षित महाराज दिग्विजय कर रहे हैं। संपूर्ण दिशाओं को जीतने के लिए परीक्षित महाराज निकले हैं और कथा ये चल रही है कि परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि उनके राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया है तो वे इसको पसंद नहीं करते हैं कि उनके राज्य में कलयुग प्रवेश करे, इसलिए अपनी सेना लेकर के उन्होंने जो है अपने पूरे राज्य में, पूरा राज्य का मतलब पूरी पृथ्वी, तो पूरी पृथ्वी में भ्रमण करना शुरू कर दिया अपने शासन की स्थापना करने के लिए कि कलयुग का शासन कहीं नहीं रहेगा। तो अपने शासन की स्थापना करने के लिए, अपने शासन की घोषणा करने के लिए परीक्षित महाराज ने जो है दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया है। तो पिछले श्लोक में था स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः, अपनी सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। दिग का मतलब दिशाएं, विजय, संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े परीक्षित महाराज, है ना। तो अब इस श्लोक में जो है पांच स्थानों के नाम बतलाए गए हैं। पहला स्थान है भद्रास्व वर्ष, दूसरा केतुमाल वर्ष, तीसरा भारत वर्ष और चौथा उत्तर कुरु वर्ष और पांचवा किम पुरुष वर्ष। ये जम्बूद्वीप के स्थान है और जम्बूद्वीप 9 वर्षों में विभाजित है। जम्बूद्वीप 9 वर्षों में विभाजित है और जिसमें हम लोग निवास करते हैं वो भारत वर्ष है और इसके अलावा 8 वर्ष और भी हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो चर्चा कर रहे हैं इसको हम सुनकर के और ज्यादा चर्चा करेंगे जम्बूद्वीप के इन स्थानों की। तो सबसे पहले श्लोक में क्या है, भद्रास्व। तो प्रभुपाद जी भद्रास्व की चर्चा कर रहे हैं। भद्रास्व ये जो भद्रास्व वर्ष है ये मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और ये गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। ये चित्र अगर आप देख सकें जो एक वृत्ताकार बनाया गया है तो ये जम्बूद्वीप है, वृत्त के समान है जम्बूद्वीप। आजकल पृथ्वी का नक्शा ऐसा नहीं मिलता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो शास्त्रों के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जम्बूद्वीप इस प्रकार है, ठीक है ना। और जम्बूद्वीप में 8 पर्वतों के द्वारा 9 विभाजन हुए हैं। आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग पास में, जो दूर है वो नहीं देख पा रहे। तो ये सबसे नीचे जो है भारतवर्ष है, सबसे नीचे यानी दक्षिण में, जम्बूद्वीप के दक्षिण में नक्शे में जो है ना, जो नीचे की दिशा है वो दक्षिण दिशा कहलाती है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे यानी दक्षिण में भारतवर्ष है और ये घिरा हुआ है हिमालय पर्वत से। एक रेखा जो ऐसी खींची है, ये हिमालय पर्वत की रेखा है और ये चारों तरफ खारे पानी का समुद्र है। फिर हिमालय पर्वत के उत्तर में किमपुरुष वर्ष है और उसके बाद एक पर्वत है और उसके बाद हरिवर्ष, हरिवर्ष है, हरिवर्ष के बाद ये इलावृत वर्ष है, इलावृत वर्ष के बीच में सुमेरु पर्वत है, सोने का एक पर्वत है, और एक ये पर्वत और एक ये पर्वत, ये दो जो पर्वत हैं, तो ये भद्रासव वर्ष को विभाजित करते हैं, ये भद्रासव वर्ष है और ये केतुमान वर्ष है। तो भद्रासव वर्ष जम्बूद्वीप में कौन सी दिशा में है, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। भद्रासव वर्ष जो है पश्चिम दिशा में है और केतुमान वर्ष पूर्व दिशा में, ठीक है ना। तो इसमें जो श्लोक में जो सबसे पहला नाम आया है भद्रासव वर्ष का, मतलब पश्चिम दिशा का स्थान, पर इसे महाराज भद्रासव वर्ष में गए, और फिर एक केतुमान वर्ष आया दूसरा, तो ये पूर्व दिशा का है, भद्रासवम केतुमालम चा। और फिर इलावृत वर्ष के उत्तर में एक पर्वत है जिसके उत्तर में रम्यक वर्ष है, फिर रम्यक वर्ष के उत्तर में एक पर्वत है और उसके उत्तर में हिरण्यमय वर्ष है, फिर उसके उत्तर में एक और पर्वत है और उसके बाद जो सबसे अंत में जो उत्तर दिशा में है वो कुरुवर्ष है। सबसे उत्तर में कुरुवर्ष है तो इसको उत्तर कुरु कहा गया है, जिससे कि ये कुरुवर्ष मतलब ये कहीं भ्रमित ना हो कि कुरुवर्ष कौरवों से संबंधित हो, है ना। ये कुरुवर्ष जो है ना, ये कुरुवंश से संबंध नहीं, महाराज कुरु से कोई संबंध नहीं इसका, है ना। तो ये उत्तर कुरुवर्ष इसको कहा गया है। तो इसमें लिखा हुआ है भद्रास्वम मतलब बिल्कुल पश्चिम दिशा का स्थान, फिर केतुमालम जो पूर्व दिशा का स्थान है, फिर भारतवर्ष जो दक्षिण में है, और फिर उत्तरान कुरुन उत्तर दिशा। तो 9 वर्ष जो है जो जम्बूद्वीप के अंदर हैं, तो ये 4 जो वर्ष हैं ये 4 दिशाओं में बने हुए हैं, और फिर बीच में और कौन कौन से वर्ष हैं, भारत वर्ष के उत्तर में किमपुरुष वर्ष, फिर हरिवर्ष है, फिर इलावृत वर्ष के उत्तर में रम्यक वर्ष और हिरण्यमय वर्ष है। तो ये जम्बूद्वीप के अंदर है। तो अक्सर जब पूरी पृथ्वी की बात कही जाती है तो इसका मतलब जम्बूद्वीप ही होता है। जब कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं, है ना, तो ये 9 वर्षों में ही घोड़ा जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो लवण समुद्र है, खारे पानी का समुद्र है। तो शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूं मैं कि इसकी जो चौड़ाई है, समुद्र की चौड़ाई है 1,00,000 योजन है, मतलब 8,00,000 मील का समुद्र है। तो ये संभव नहीं है इसको, इस समुद्र को पार करना। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी में 7 समुद्र 7 द्वीप हैं, जो सबसे छोटा और बिल्कुल बीच में जो द्वीप है वो जम्बूद्वीप है, जिसमें हम लोग जम्बूद्वीप के अंदर भी भारतवर्ष में है। तो यहाँ परिचय महाराज का वर्णन किया गया है कि जम्बूद्वीप के 9 के 9 वर्षों में गए और अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपना शासन स्थापित किया, है ना। लेकिन ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं परिचय महाराज, इसलिए अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं, क्यों, ताकि कलयुग ना प्रवेश करें, ठीक है ना, कलेश रक्षा करने के लिए। ये मतलब ऐसे राजा नहीं है जो कि रजोगुण तमोगुण में जो है ना अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, नहीं, ये कृष्ण को केंद्र मान करके ही सब कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भद्रास्व वर्ष के बारे में कि मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और ये गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। महाभारत में भीष्म पर्व के सातवें अध्याय में श्लोक संख्या 14 से 18 तक इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के भीतर आ गया था। महाराज परीक्षित को पहले अपने पितामह द्वारा शासित सारे देशों का सम्राट घोषित किया गया था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो हस्तिनापुर है जहाँ हम लोग हैं, वैसे तो ये इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर गंगा जी के तट पर है, तो ये इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर भी फिर इकट्ठा हो गया जब महाभारत के युद्ध समाप्त हुआ। तो समझो कि यही मतलब पूरे जम्बू द्वीप की राजधानी है, केवल भारत की नहीं है। ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली का जो क्षेत्र है, ये पर पूरे जम्बू द्वीप की राजधानी है। तो यहाँ ही परिषद महाराज थे और यहाँ से ही पूरे जम्मू द्वीप के शासक वो घोषित किए गए। और प्रभुपाल लिखते हैं लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी जब वे ऐसे राज्यों से भेंट लेने के लिए राजधानी से बाहर निकले थे। तो राजधानी मतलब हस्तिनापुर से जब बाहर निकले तो उनको भेंट लेनी थी। तो भेंट लेने का मतलब यही है कि ये स्थान जो है उनके अधिकार में है और उनके जो आदेश हैं उनका ही पालन किया जाएगा। हर स्थान में प्रजा उनके आदेशों का पालन करेगी। और परीक्षा महाराज का आदेश क्या है? परीक्षा महाराज का आदेश वही है जो भगवान कृष्ण का आदेश है। तो वे जहां जहां जाते थे वहां वहां कृष्ण का गुणगान सुनते थे, कृष्ण का और पांडवों का गुणगान सुनते थे। तो इस प्रकार से कलयुग को जो है उन्होंने दमन किया। ये अध्याय लिखा है, अध्याय का नाम लिखा है परीक्षा ने किस प्रकार कलयुग का सत्कार किया। तो यहाँ सत्कार का मतलब क्या है? कैसा व्यवहार किया? तो यहाँ सत्कार का मतलब वो नहीं है कि भाई कलयुग का परीक्षा महाराज ने वो किया हो। अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है हाउ परीक्षा महाराज रिसीव्ड कलयुगा। तो रिसीव का मतलब सत्कार भी हो सकता है और असत्कार भी हो सकता है ना। तो कलयुग का तो परीक्षा महाराज सत्कार नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका बहिष्कार कर रहे हैं, है ना। तो कलयुग का बहिष्कार करने के लिए वे दिग्विजय कर रहे हैं परीक्षा महाराज। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं केतुमाल वर्ष, भद्रास वर्ष के बाद केतुमाल वर्ष। तो केतुमाल वर्ष जिसकी हमने चर्चा की है कि ये पूर्व दिशा का जो है वर्ष है केतुमाल वर्ष। इसमें प्रभुपाल लिखते हैं ये पृथ्वी लोक सात समुद्रों द्वारा सात द्वीपों में विभक्त है और केंद्रीय द्वीप जो जम्बू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है आठ विशाल पर्वतों द्वारा नौ वर्षों या नौ भागों में विभाजित है। ये हमने बताया ना, इनमें से भारत वर्ष भी एक है। केतुमाल को भी उपरोक्त वर्षों में से एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती हैं। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत सभा पर्व में 28वां अध्याय श्लोक संख्या 6 में प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर छपाई की गलती है, केतुमाल वर्ष मेरु के पूर्व में स्थित है। इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे, भीष्म पर्व में लिखा है 6वां अध्याय श्लोक संख्या 31। इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते हैं और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती हैं। ये निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। तो पूर्व दिशा का जो है केतुमाल वर्ष, अब दक्षिण दिशा में भारत वर्ष है। तो इसमें इस श्लोक में तीसरा नाम आता है भारत का। तो प्रभुपाद लिखते हैं भारत वर्ष के बारे में, संसार का ये भाग भी जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में से एक है। भारत वर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10 में दिया हुआ है। जम्बूद्वीप के मध्य में इलावृत वर्ष है और इलावृत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष है। तो जैसा कि हमने बताया, इलावृत वर्ष बीच में है और दक्षिण में हरिवर्ष, फिर किमपुरुष वर्ष, फिर भारत वर्ष। तो भारत वर्ष सबसे बिल्कुल किनारे में है दक्षिण दिशा में। इन वर्षों का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28वां अध्याय श्लोक संख्या 7-8 में इस प्रकार दिया गया है। नगरांश्चा वनांश्चैव नदींश्चा विमलोदकाः पुरुषान् एवं पुरुषान् देवकल्पांश्चा नारीश्चा प्रियदर्शनम् अदृष्ट पूर्वान् सुभगान् साददर्श धनञ्जयः सदनानि च शुभ्राणि नारीश्चाप्सरसां निभाम्। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां सुंदर होती हैं और कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती हैं। इसके बाद फिर भारत के बाद क्या है श्लोक में, उत्तर कुरु। उत्तर कुरु जैसा हमने बताया जम्बूद्वीप में सबसे किनारे कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है उत्तर कुरु। प्रभुपाद लिखते हैं वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरु वर्ष कहलाता है। ये 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है और हिरणमय वर्ष से श्रृंगवान पर्वत के द्वारा विभाजित होता है। इसके बाद फिर इस श्लोक में 5वां नाम आता है क्या, किमपुरुष वर्ष का। किमपुरुष वर्ष, तो किमपुरुष वर्ष इस नक्शे में भारत वर्ष के उत्तर में है। किमपुरुष वर्ष के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है। शास्त्रों के अनुसार हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है और लंबाई भी 80,000 मील की है और चौड़ाई में 16,000 मील है हिमालय पर्वत। विश्व के इन भागों को अर्जुन ने भी जीता था। सभा पर्व 28वां अध्याय श्लोक संख्या 1 और 2। किमपुरुष वर्ष के जो लोग हैं ये दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट को भेंटें प्रदान की थीं। इस भाग को किमपुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती यानी हिमालय के प्रांत कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी यहीं पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारत वर्ष आए थे। किमपुरुष वर्ष, वर्ष का तो मतलब है स्थान और किमपुरुष का मतलब जन्त क्या है, किम का मतलब क्या और पुरुष माने मनुष्य। ये कैसे मनुष्य हैं, किमपुरुष का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार के मनुष्य हैं, मतलब बड़े अजीब प्रकार के लोग होते हैं इसलिए इनको किमपुरुष कहा जाता है। मतलब मनुष्य हैं लेकिन बड़े अजीब हैं। किम का मतलब कैसे हैं, है ना। तो किम पुरुष में जो है ना हनुमान जी भी हैं। किम पुरुषों में भगवान ने अपनी विभूति हनुमान जी को बताया है श्रीमद् भागवत में। ये जामवान भी किम पुरुष हैं। तो मतलब क्या है कि इनका जो चेहरा है वो तो बानर का, रीछ का, ऐसे तरह तरह के चेहरे होते हैं और बाकी शरीर होता है मनुष्य जैसा, करीब करीब मनुष्य जैसा होता है। हाँ? तो ये मतलब बानर जाति नहीं है, वास्तव में ये बानर जाति नहीं है। ये किम पुरुष जो है ना जाति अलग ही है जो ब्रह्मा जी ने बनाई है और उनके लिए कुछ धर्म के नियम बताए हैं। जब बाली ने भगवान राम से तर्क किया था कि आपने मेरा वध क्यों किया, भगवान राम का तर्क था कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी से सहवास किया इसलिए तुम्हारा वध होना चाहिए, तो बाली ने तर्क किया था कि मैं तो पशु हूं, हम लोग तो पशु हैं, हम लोग पशु हैं, पशुओं के लिए तो ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं। तो भगवान राम ने फिर उनको उत्तर दिया था कि तुम लोग पशु नहीं हो, तुम किम पुरुष जाति के जो है मनुष्य हो, और ब्रह्मा जी ने इस सब प्रकार के मनुष्यों की रचना करके उनके लिए धर्म के नियम बनाए थे, तो तुम जानबूझ करके तुम जो है पशु के समान आचरण करते हो, तो फिर हमने भी तुमको पशु की तरह मारा है। भगवान राम ने बाली के वध का जो है मतलब औचित्य बताते हुए कहा कि तुम जो है पशु नहीं हो, तुम किम पुरुष हो, है ना। तो किम पुरुष वर्ष में हम आगे चल करके आज हम सुनेंगे कि किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी हैं जो भगवान राम की आराधना करते हैं, तो हनुमान जी अभी भी किम पुरुष वर्ष में निवास करते हैं। तो प्रभुपाल लिखते हैं, कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी यहीं पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था, जिसमें सभी दिशाओं के सभी सागरों के निकट के महाद्वीप सम्मिलित थे। प्रभुपाल जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब जो जम्बू द्वीप के 9 वर्ष हैं, तो इनके बारे में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कौन से वर्ष में जो भगवान है किस रूप में है। प्रत्येक वर्ष में भगवान की पूजा होती है, और कोई विशेष व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, और भगवान का कोई विशेष रूप होता है। तो ये हम आज विशेष रूप से सुनेंगे। और परीक्षित महाराज भी जा रहे हैं सब दिशाओं को जीतने के लिए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए। तो किस लिए जा रहे हैं, किस लिए? भगवान का गुणगान सुनने के लिए, है ना। वे जो है बलपूर्वक भी लोगों को विवश करते हैं कि भगवान का गुणगान करो, और प्रोत्साहन देते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। तो परीक्षित महाराज की दिग्विजय का जो है यही उद्देश्य है। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्षों में जो वर्णन किया है कि किस वर्ष में भगवान किस रूप में है, और कौन विशेष भक्त जो है भगवान की किस प्रकार स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो आज हमने सोचा कि इस श्लोक पर हम यही चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद है और अध्याय संख्या तो अध्याय संख्या है 18, जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। तो सुखदेव गोस्वामी 9 वर्षों में सबसे पहले भद्राश वर्ष का वर्णन करते हैं, और आज के श्लोक में भी सबसे पहले भद्राश वर्ष का नाम आता है। तो भद्राश वर्ष में भद्रश्रवा नाम के एक भक्त हैं, ये धर्म के पुत्र हैं, भद्रश्रवा नाम के भक्त हैं, और उनका राज्य है। और भद्रश्रवा अपने सेवकों के साथ और राज्य के समस्त वासियों समेत भगवान हयशीर्ष की पूजा करते हैं। हयशीर्ष या हयग्रीव, भगवान हयग्रीव या हयशीर्ष, हयशरा ये नाम है। जानते हैं ये भगवान कैसे हैं? हयशीर्ष का मतलब क्या है? हय माने घोड़ा और शीर्ष माने सिर। वे भगवान जिनका सिर घोड़े का है, है ना। तो हयग्रीव भगवान या हयशीर्ष भगवान की पूजा करते हैं। हयशीर्ष भगवान भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, और वे समस्त धार्मिक विधानों के निदेशक हैं। गहरी समाधि में स्थित भद्रश्रवा और उनके सेवक भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, और इन स्तुतियों का कीर्तन करते हैं। अब क्या स्तुति है? भद्रश्रवा जो धर्म के पुत्र हैं वो स्तुति करते हैं। है शीर्ष भगवान की। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले, समस्त धार्मिक विधानों के बनाने वाले श्री भगवान को हमारा नमस्कार है। हम उन्हें बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। ये मंत्र है, ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नम इति। तो ये जो है प्रणाम मंत्र है उनका, हयग्रीव भगवान का। और अब प्रार्थना, अब प्रार्थना में वो क्या बोलते हैं, अहो कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर नास्ति मृत्यु की भी परवाह नहीं करता, ये जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है तो भी वह उसके प्रति लापरवाह है, चाहे उसके पिता की मृत्यु हो अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों ना हो, वो उसकी संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। भद्र श्रवा देखो कैसे भगवान का गुणगान करते हैं। अपने पिता की मृत्यु होती तो भी उसकी संपत्ति का भोग करना चाहता है, और पुत्र की मृत्यु हो तो भी उसकी संपत्ति का भोग करना चाहता है, और अपनी मौत के प्रति कितना लापरवाह है, कितना आश्चर्य है। प्रत्येक दशा में वह प्राप्त धन से किसी की परवाह किए बिना सांसारिक सुख का उपभोग करने का प्रयत्न करता है। अहो विचित्रम भगवद विचेषितम ग्रंथम जनोयम हिमिशन न पश्यति ध्यायन सन्नर्हि विकर्म सेवितुम निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीवसति। हे जन्म भगवान, आत्मज्ञान में समुन्नत वेदों को जानने वाले जानते हैं कि ये भौतिक जगत नश्वर है। वे समाधि की दशा में इस जगत की वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हैं। वे सत्य का उपदेश भी देते हैं, किंतु कभी कभी वे भी आपकी माया से क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। ये आपकी विचित्र लीला है, अतः मैं समझ सकता हूँ कि आपकी माया कितनी विचित्र है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सामान्य व्यक्ति तो मूर्ख है ही है, लेकिन बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वो भी आपकी माया से मूर्ख बन जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। वदन्ति विश्वम कवयस्मै नश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाजि माययाम सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितम्। हे भगवान, यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन और प्रलय से सर्वथा अलग हैं और इन कर्मों से आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, तो भी वे आपके द्वारा किए गए माने जाते हैं। हमें इस पर विस्मय नहीं होता, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व हैं। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि आपकी अचिंत शक्ति के कारण ही प्रत्येक घटना घटती है। विश्वोद्भव स्थान निरोध कर्मते यकर तुरंगी कृतम अप्यावृत युक्तम न चित्रम तयी सर्व कारणे युक्तम न चित्रम तयी कार्य कारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्त च वस्तुतः। तो ये प्रार्थना कौन कर रहा है, भद्र श्रवा कर रहे हैं, उनके नाम से ही भद्राश्व वर्ष मुख्य लाता है। और ये किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, कौन से भगवान है, हयग्रीव भगवान है। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुरा कर उन्हें रसातल में ले गया था। तो अज्ञान ही जो है दैत्य के रूप में आया था, वो जो वेदों को चुरा ले गया, और आपने हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प श्री भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान रसातलाद्यो नृतुंग नितुरंग विग्रह प्रत्यादे वै कवि भी आचते तस्मै नमस्ते विदते हिताय इति। अब इसके बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं हरिवर्ष का। हरिवर्ष में कौन है, नरसिंह भगवान है, ठीक है। हरिवर्ष में नरसिंह भगवान हैं और उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं कौन कौन प्रहलाद महाराज करते हैं। तो भगवान नरसिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में निवास करते हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवत भक्तों के शिरोमणि हैं और समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। उन्हें भगवान नरसिंह देव परम प्रिय हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने समस्त सेवकों और हरिवर्ष के समस्त वासियों सहित भगवान नरसिंह देव की पूजा इन मंत्रों के द्वारा करते हैं। अब उनका प्रणाम मंत्र क्या है नरसिंह देव का? समस्त तेज के स्रोत श्री नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वज्र नख तथा वज्र दंश, मतलब वज्र के समान नाखून वाले और वज्र के समान दांत वाले, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी कर्म वासनाओं को नष्ट कर दो, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दो, जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सकें। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रतंस्त्रम कर्माशयान दंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभियम अभियम आत्मनि भूयस्था ओम सौम। ये प्रणाम मंत्र है। अब प्रार्थना, प्रहलाद महाराज जो है नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं। कैसे कहते हैं? इस समस्त विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रसन्न हो, सभी जीवात्माएं भक्तियों का अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर ही एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहें। ये किसकी प्रार्थना है? प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। स्वस्तिस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धियाम मनश्च भद्रम भजता दधोक्षजे आवेशताम नो मतिरप्य हेतु की। और आगे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। हे भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हम पारिवारिक जीवन के बंधन के प्रति, जिसमें क्या है, घर, स्त्री, संतान, मित्र, धन और संबंधी हैं, इनमें हम आकृष्ट ना हो, मतलब परिवार में रहें लेकिन परिवार से आकृष्ट ना हो। यदि किसी से किंचित आसक्ति हो भी तो किससे? वो भक्तों से हो आसक्ति, जिनके लिए श्री कृष्ण ही परम प्रिय हैं। अगर आसक्ति हो तो भक्तों से हो। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट रहता है। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति का प्रयास नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जल्दी ही कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है। किंतु जो भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए ऐसा कर पाना कठिन है। मागारिदात्म वित्त बंधु सुम संगो यदि श्यान भगवान प्रिय सुन यह प्राण वृत्तिया परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत्य दूरान्न तथेन्द्रिय प्रिय। आगे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से, जिनके लिए श्री भगवान मुकुंद ही सब कुछ हैं, भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर समझा जा सकता है। मुकुंद के यशस्वी कार्यों को सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान का गुणगान सुनने से ही भगवान की संगति होती है। निरंतर उत्सुकता पूर्वक भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त मल को दूर कर देते हैं। दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र तीर्थों के दर्शन से दीर्घ काल के अनंतर ही हृदय स्वच्छ हो पाता है। मतलब कृष्ण कथा श्रवण से हृदय जल्दी स्वच्छ होता है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। अतः ऐसा कौन यज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की पूर्णता के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा? यत् संग लब्धम निज वीर वैभवम तीर्थम मोहो संप्रसिताम हिमानसम गजम को वै न सेवे तमुकुंद विक्रमम। फिर एक श्लोक और भी प्रहलाद महाराज का है जिसको प्रभुपाद ने कई बार उद्धृत किया है। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है उसके शरीर में सभी देवताओं के महान गुण प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है उसमें कोई सद्गुण नहीं आते, भले ही वो योग अभ्यास में दक्ष क्यों ना हो अथवा अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, क्योंकि वो मनोकल्पना द्वारा भगवान की माया की सेवा में तत्पर है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कोई जानता है श्लोक? हाँ, धन्यवाद। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचनाम सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुनाः हराव भक्तस्य कुतो महान गुणा मनोरथे नासति धावतो बहिः। तो आपको पता होना चाहिए कि ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत में किसने बोला है, कौन से स्थान पर बोला है। प्रहलाद महाराज हैं हरिवर्ष में नरसिंह भगवान की प्रार्थना में ये श्लोक बोल रहे हैं। इसके बाद प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जल राशि में रहना चाहते हैं उसी प्रकार समस्त बद्ध आत्माएं श्री भगवान के शरण की कामना करती हैं। जैसे मछली का स्थान या शरण या आश्रय सुरक्षा किसमें है? पानी में। उसी प्रकार सब जीवों का आश्रय और सुरक्षा किसमें है? भगवान में। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष किन्हीं कारणों से परमात्मा के शरण ना ग्रहण कर गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाता है तो उसकी स्थिति निम्न श्रेणी की तरुण दंपति जैसी होती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। तो इस भौतिक संसार में कोई स्त्री पुरुष है एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के लिए महान बने रहते हैं, लेकिन उनका कोई महानता थोड़ी है इसमें। उसी प्रकार से जो भगवान की शरण ना ले तो इस भौतिक संसार में चाहे कितना भी महान बन जाए लेकिन वो बिल्कुल छोटा है ना, तुच्छ है। और भगवान जो है सब प्राणियों की आत्मा है, उसी प्रकार से जैसे पानी आत्मा है मछली की। हरिर् साक्षान् भगवान् शरीरिणाम् आत्मा झसाणामेव तोयमीप्सितम् हित्वा महान्तमिति सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वैसा दंपतीनाम्। अतः हे असुरो, देखो प्रहलाद महाराज असुरों को शिक्षा दे रहे हैं। अतः हे असुरो, गृहस्थ जीवन के सुख का परित्याग करके भगवान नरसिंह देव के चरणारविंदों के शरण ग्रहण करो, वे ही निर्भीकता की वास्तविक शरण स्थली हैं। राग दुर्दमनीय कामनाएं विषाद क्रोध निराशा भय झूठी प्रतिष्ठा की भूख इन सब का मूल कारण गृहस्थ जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तस्मान् रजो राग विषाद मन्यु मानस्प्रिया भय धैन्याधिमूलम हित्वा गृहम संसृति चक्रवालम सिंह पादम भजदा कुतो भयमिति। अब हरिवर्ष के बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं केतुमाल वर्ष, इस श्लोक में केतुमाल वर्ष का नाम आया है। केतुमाल में भगवान विष्णु कामदेव के रूप में निवास करते हैं। तो भगवान है ये कामदेव, वो देवता नहीं है बल्कि कामदेव के रूप में भगवान है। और पूजा कौन करता है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जो है प्रजापति संवत्सर और उनके सब पुत्र और पुत्रियों के साथ लक्ष्मी जी भगवान की पूजा करती हैं। प्रजापति की पुत्रियां रात की देवता हैं और उनके पुत्र दिन के देवता हैं। तो इनकी संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन और रात की संख्या के बराबर है। अगर 100 साल की आयु मानी जाए तो 36,000 दिन हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मी जी पूजा करते हैं भगवान की। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव अत्यंत सुंदर चाल से चलते हैं, उनकी मंद मुस्कान मनोहर है और जब वे अपनी भ्रुकुटियों को किंचित ऊपर उठाकर लीला पूर्वक देखते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, और वे लक्ष्मी जी को आनंदित करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। लक्ष्मी जी हाँ परम दयालु कामदेव के रूप में भगवान की पूजा करती हैं। भक्ति में तल्लीन रहकर लक्ष्मी जी इन मंत्रों का जप करती हैं। अब लक्ष्मी जी प्रणाम मंत्र बोलती हैं, मेरे समस्त इंद्रियों और समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति की नियंता भगवान श्री ऋषिकेश को मेरा नमस्कार है। वे समस्त दैहिक मानसिक और बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर, उनके फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। पांचों इंद्रियों के विषय और मन समेत 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो उनकी शक्ति होने के कारण उनसे भिन्न है। वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक और मानसिक शक्ति के कारण है, जो उनसे अभिन्न है। निसंदेह समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले और भरता है। समस्त वेदों के ध्येय हैं, समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना है। अतः हम सभी उन्हें सभी ने नमस्कार करते हैं। वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहे। ये प्रणाम मंत्र है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषैर विलक्षित आत्मने आकूतीनाम चित्तीनाम चेतसाम विशेषाणाम चाधिपतये षोडश कला यच्छन्दो मया अन्न यायामृत मयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते अभियत्र भूया। अब उनकी प्रार्थना है लक्ष्मी जी की, हे प्रभु आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के स्वतंत्र स्वामी हैं। अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति की कामना से आपको नमन करती हैं, वे अवश्य ही मोहग्रस्त हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि ऐसा पति ना तो उनकी और ना ही उनकी संतानों की रक्षा कर सकता है। वो पति स्वयं काल के अधीन है, कर्म फल के अधीन है, प्रकृति के गुणों के अधीन है। अतः वह ना तो संपत्ति की रक्षा कर सकता है, ना जीवन की रक्षा कर सकता है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप ही एकमात्र सब स्त्रियों के पति हैं। स्त्रियो मृत स्व ऋषिकेश्वरम सतो ह्याराध्य लोके पतिमा शासते अन्यम तासाम नते वै परिपांच पत्यम प्रियम धनोय धनायुं श्रियतो स्वतंत्रम। आगे लक्ष्मी जी की प्रार्थना है, जो स्वयं निर्भय है और जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, वही वास्तव में पति हो सकता है। पति उसी को कहा जाएगा जो स्वयं निर्भय हो, और उसी को रक्षक कहा जा सकता है। अतः हे प्रभु आप ही एकमात्र पति हैं, कोई अन्य इस पद का भाग्य नहीं हो सकता। पति पति शब्द जो है और किसी के लिए सही नहीं है कहना। यदि आप एकमात्र पति ना होते तो आप भी अन्यों से डरते। अतः वेदों के पारंगत व्यक्ति आपको ही प्रत्येक का स्वामी स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई अन्य पति और रक्षक नहीं है। सवे पति स्याद कुतो भया स्वयं समन्दता पाति भयातुरम जन्म स एक तरथा मिथो भयम नैवात्म लाभादधि मन्यते परम। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमल की आराधना विशुद्ध प्रेम बस करती है, आप उसकी समस्त कामनाओं को स्वयं ही पूरा करते हैं। यदि कोई स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा विशिष्ट प्रयोजन के लिए करती है तो आप उसकी कामनाओं को भी शीघ्र पूरा करते हैं, किंतु अंततः वो उसका हृदय टूट जाता है, वो पश्चाताप करती है। अतः किसी भौतिक लाभ के लिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं करनी चाहिए। या तस्ते पाद सरोहारणम निकाम ये खिल कामलम पटाम तदेव राशिपितोर्जित भग्न याच्या भगवन प्रतप्यते। हे अजित, मुझे पाने के लिए, देखो लक्ष्मी जी कह रही, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्म और शिव आदि सब देवता असुर घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अलावा मैं अन्य पर अनुग्रह नहीं करती, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो। चूंकि मैं निरंतर आपको अपने हृदय में बसाए रहती हूँ, इसलिए भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी पर मैं कृपा नहीं करती। लक्ष्मी जी कह रहे हैं, मत प्राप्त ये जय सहसुरा सुरादयन तप्यंत उग्रम तपेन्द्रिय धिया भगवत पाद परायणा नमाम विन्दंत हम तंद्रो जित। हे अच्युत, आपका कर कमल सभी आशीर्वादों को देने वाला है। अतः आपके शुद्ध भक्त आपके कर कमल की पूजा करते हैं और आप अत्यंत दया पूर्वक उनके सिरों पर अपना हाथ रखते हैं। मेरी भी यही कामना है कि आप मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखो। यद्यपि आप पहले से ही अपने वक्षस्थल पर मुझे धारण करते हो, लक्ष्मी जी कह रही हैं, किंतु इस सम्मान को मैं झूठी प्रतिष्ठा मानती हूँ। आप अपनी दया भक्तों पर ही दिखाते हो, मुझ पर नहीं दिखाते हो, लक्ष्मी जी कह रहे हैं। निसंदेह आप सर्वसमर्थ हो, आपके प्रयोजन को भला कौन समझ सकता है। सतम ममाप्यच्युत शीर्ष निबंधितम करांबुजम यत्तुनिधायसात्वताम विवर्ति माम लक्ष्मी वरेण्य मायया कई सुरस्य हितमोहितुम विभूरिति। अब रम्यक वर्ष में सुखदेव गोस्वामी रम्यक वर्ष की बात करते हैं, तो इसमें भगवान है मत्स्य रूप में। किस रूप में? मत्स्य रूप में है भगवान, और उनके वहां के जो अधिपति हैं वे वसवत मनु हैं, जो इस समय चल रहे हैं वे वसवत मनु। तो वे रम्यक वर्ष में मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं। मैं शुद्ध स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और ज्ञानेन्द्रिय शक्ति के मूल स्रोत हैं। समस्त अवतारों में प्रकट होने वाले वे महामत्स्य अवतार हैं। मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूँ। तो ये व्यवस्थित मनु ही सत्यव्रत राजा थे, और मत्स्य भगवान ने उनको ही जो है नौका में बिठा करके प्रलय के समुद्र में विहार किया था। अगले जन्म में वो व्यवस्थित मनु बने, तो ये मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय ओजसे सहस्ये बलाय महामत्स्याय नम इति। अब प्रार्थना। हे ईश्वर, जिस प्रकार नट पुतलियों को बस में रखता है, नट क्या करता है? पुतली को बस में करता है, कठपुतली को, और पति अपनी पत्नी को बस में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड के समस्त जीवात्माओं को अपने बस में रखने वाले हैं। यद्यपि आप जन जन के हृदयों के भीतर परम साक्षी के रूप में और उनके बाहर भी निवास करते हैं, किंतु समाज, जाति और देश के नेता आपको समझ नहीं पाते। केवल वैदिक मंत्रों की स्वर लहरियों को सुनने वाले आपको जान पाते हैं। अंतर बहिश्चाखिल लोकपाल कैर अदृष्ट रूपो विजरसुरुन्मन सहीश्वरस्तम इदम्ब से नयन नाम नारुमयी नरास्त्रियम। हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोकपाल जैसे ब्रह्मा और अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्या करते हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे ना तो पृथक पृथक न सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड का पालन कर पाते हैं। आप समस्त मनुष्यों, पशुओं और वनस्पतियों, पक्षियों, पर्वतों और संसार में जो भी दिखाई पड़ता है उसके एकमात्र पालक हो। हम लोग के पाला के लिए मत सरे ज्वरा हितवाय दंतो विप्रतंग समेत साम पातुम न से कुर्दिपदस्य तुष्पदहा सरीसृपम स्थाणु यदत्र दृश्यते। हे सर्वशक्तिमान, कल्प के अंत में ये पृथ्वी जल की बाढ़ से प्रलय की तरंगों के नीचे डूब गई थी, उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की। कौन कह रहा है? सत्यव्रत राजा यानी व्यवस्थित मनु। आपने मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। हे जन्मा, आप इस समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करने वाले हैं, इसलिए आप ही समस्त जीवात्माओं के कारण स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भवान युगान्तारण और मिमालिनी छोड़े में मामो सधी वीरोधाम निधि मया सहो रूप तेज ओजसा तस्मै जगत प्राण गणात्मनेनम इति। अब हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु है किस रूप में? कच्छप रूप में है, और इनकी पूजा करते हैं अर्यमा नाम के जो है ना एक देवता हैं, वो सदैव स्तुति करते हैं कच्छप भगवान की। किस प्रकार से? प्रणाम मंत्र है। हे प्रभु, कच्छप स्वरूप आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगान हैं, आप भौतिकता से रहते हैं और परम सत्व में स्थित हैं। आप जल में विचरण करते रहते हैं किंतु कोई आपका पता नहीं लगा पाता, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने दिव्य स्थिति के कारण आप भूत, वर्तमान, भविष्य से बंधे नहीं हैं। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित हैं, अतः मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते यकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषाय अनुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो नमस्थानाय नमस्ते। हे भगवान, ये दृश्य जगत आपकी सृजन शक्ति का प्रदर्शन है। इसके अंतर्गत अनंत रूप आपकी बहिरंगा शक्ति माया का प्रदर्शन मात्र है, अतः यह विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। आपके वास्तविक रूप का दर्शन तो केवल भक्त करते हैं दिव्य भावना में, और कोई नहीं कर पाता, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यद रूपम एतन्न जमा हे अर्पितम अर्थ है स्वरूपम बहुरूप रूपितम संख्या न यस्यास्त्यथोपलम्बनात् तस्मै नमस्ते प्रदेश रूपिणे। हे प्रभु, आप अपनी शक्तियों को अनंत रूपों में प्रदर्शित करने वाले हैं, और जरायुज स्वेदज अंडज उद्भिज ये समस्त जड़ और चेतन जीव आत्माएं जिनमें देवता हैं, ऋषि हैं, पितर हैं, बाहरी आकाश में, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में, और फिर पर्वत नदियां समुद्र सागर द्वीप सब सम्मिलित हैं। निस्संदेह समस्त ग्रह नक्षत्र भी आपकी विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं, किंतु मूलतः आप एक हैं और कोई नहीं, अतः आपसे परे कोई नहीं है। ये संपूर्ण विराट जगत मिथ्या नहीं है, वरन आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जरायुजम स्वेदज मंडजोद्भितम चराचरम देवर्षि पितृ भूतमेन्द्रियम जोखम क्षति शैल सरित समुद्र द्वीप ग्रह क्षेत्रभिधेय एकहम। हे प्रभु, आपका नाम रूप और आकृति असंख्य रूपों में प्रकट होती है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि आप कितने रूपों में विद्यमान हैं, फिर भी आपके स्वयं के अवतार कपिल देव जैसे मुनियों ने इस विराट जगत में 24 तत्व निश्चित किए हैं। अतः यदि कोई सांख्य के दर्शन में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि विभिन्न सत्यों को आपसे सुने। दुर्भाग्य से जो आपके भक्त नहीं है वे केवल तत्वों की गणना कर पाते हैं, किंतु आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यस्मिन संख्ये विशेष नाम रूपाकृतो कविभि कल्पितेयम् संख्या तत्व दृशापनीयते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनाय इति। अब उत्तर कुरु, इस श्लोक में उत्तर कुरु वर्ष है ना, उत्तर कुरु में भगवान है किस रूप में, वराह रूप में। क्या समझे, जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में वराह रूप में है, और पूजा कौन करता है, पृथ्वी देवी। पृथ्वी का उद्धार किया था ना भगवान ने, तो पृथ्वी देवी अन्य सभी वासियों समेत इस मंत्र का जप करती हैं और आराधना करती हैं। अब ये प्रणाम मंत्र क्या है, हे प्रभु हम विराट पुरुष के रूप में आपको नमस्कार करते हैं, केवल मंत्रोच्चार से हम आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। आप यज्ञ रूप हैं, आप क्रतु हैं, अतः यज्ञ के सभी अनुष्ठान आपके दिव्य शरीर के अंत हैं, केवल आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। आपका स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त है, आप त्रियुग कहलाते हैं क्योंकि कलयुग में आपने प्रच्छन्न अवतार लिया है, यानी चैतन्य महाप्रभु का अवतार प्रच्छन्न है। आप छहों रिद्धियों के स्वामी हैं। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतवे महाध्वराव्याय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। अब प्रार्थना, ऋषि और मुनि काठ में छिपी अग्नि को उत्पन्न करने में समर्थ हैं, मतलब अरणि के द्वारा उत्पन्न करते अग्नि को। हे प्रभु, ऐसे व्यक्ति आपको प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि अपने शरीर में भी देखने का प्रयास करते हैं। मानसिक या भौतिक क्रियाओं से आपको समझा नहीं जा सकता है, आप स्वतः प्रकट होते हैं। अतः जब आप देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वतोभावेन आपकी खोज में लगा है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यस्य स्वरूपम कवयो विपश्चितुम गुणेषु दानस्य विजाते वेदसम मदनन्ति मथना मनसा दीक्षवो गुणम क्रियार्थैर नम ईरितात्मने। ये कौन प्रार्थना कर रहा है, पृथ्वी देवी प्रार्थना कर रही हैं। भौतिक सुख के साधन, इंद्रियों के कर्म, इंद्रियों के देवता, शरीर और काल और अहंकार, ये सभी आपकी माया से उत्पन्न है, जिन्होंने योग के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है। वे ये देख पाते हैं कि ये सभी तत्व आपकी माया के ही परिणाम हैं। वे आपके दिव्य रूप को भी प्रत्येक वस्तु की परम आत्मा के रूप में देख पाते हैं। अतः मैं पुनः पुनः आपको नमस्कार करती हूँ। द्रव्य क्रिया है तो कर्तृभी माया गुण हर वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वीक्षयांगातिशयात्म बुद्धि निरस्ते माया कृत नमो नमः। हे प्रभु, आप इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन या संहार के इच्छुक नहीं है, किंतु बद्ध जीवों के लिए अपनी सृजन शक्ति के द्वारा इन क्रियाओं को करने वाले हैं। जिस प्रकार चुंबक के प्रभाव से लोहे का टुकड़ा घूमता है, ठीक उसी प्रकार जब आप समस्त माया पर दृष्टि डालते हैं तो सारे जड़ पदार्थ गति करने लगते हैं। करोति विश्वस्थिति संयमोदयम यसेप्सितम नेप्सितमेक्षतुर्गुण माया थायो भ्रमते तदाश्रयम ग्रामणो नमस्ते गुण कर्म साक्षिणे। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आदि सूकर रूप में आपने किसके साथ युद्ध किया था? हिरण्याक्ष दैत्य के साथ युद्ध करके उसका संहार किया। फिर आपने अपने दांतों के अगले भाग में मुझ पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठाया, जैसे हाथी खेल खेल में कमल का फूल तोड़ लेता है, अपनी सूंड में उठा ले कमल का फूल। मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। प्रमत दैत्यम प्रतिवारणम मृधे यो माम रसाया जगदादि सूकरः कृत्वा गृदंस्ते निर्गादु तन्वतः क्रीडन वे भा प्रणता स्मितम विभुम इति। अच्छा तो अब है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष में भगवान है लक्ष्मण के अग्रज और सीता के पति भगवान रामचंद्र हैं किम पुरुष वर्ष में, और हनुमान जी सेवा में तत्पर रहते हैं। किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित सदैव लक्ष्मण के अग्रज और सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में तत्पर रहते हैं। किम पुरुष वर्षे भगवंतमादि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाभिरदः परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुष रवितरेत भक्ति रूपास्ते। गंधर्वों का समूह है भगवान रामचंद्र की इसका गान करता है जो अत्यंत मंगलकारी है। हनुमान जी और किम पुरुष वर्ष प्रधान पुरुष आरती सेन भी वहाँ है, अत्यंत मनोयोग से इस यशो गान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी इस मंत्र का जप करते हैं। अब क्या है उनका प्रणाम मंत्र? हे प्रभु, मैं ओंकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप आर्यों के समस्त गुणों के भंडार हैं। आपका चरित्र तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाला है और आप अपनी इंद्रियों और मन को सदैव अपने वश में रखते हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल सोने के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे पारसमणि हैं जिसे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा होती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप महाराज हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवादन कृष्णाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। अब प्रार्थना है भगवान को, जिनका विशुद्ध रूप भौतिक गुणों द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में से अनन्य कहा गया है, अपने तेज से वो भौतिक प्रकृति से अछूता है, भौतिक दृष्टि से अप्रभावित है, अतः वो दिव्य है। ना तो आपके रूप आपका रूप कोई कर्म करता है, ना उसका नाम है ना रूप, केवल श्री कृष्ण भावना में ही ईश्वर के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको नमस्कार करें। यत्तन विशुद्धानुभव मात्रमेकम् सुतेजसाध्वस्त गुण व्यवस्थम प्रत्येक प्रशांतम सुधियोपिलंबनम नाम रूपम निरहम प्रपद्ये। राक्षसों के नायक रावण को ये वरदान प्राप्त हुआ था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था, वे तो सब प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण है, उन्हें किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं है, अतः वे भला सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते हैं? वो दिखा रहे हैं कि वो कष्ट भोग रहे हैं। मर्त्यावतारस्य मर्त्यलस्य क्षणम रक्षोवदाय न केवलम विभो कुतोऽन्यथा स्यान्दमतः आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। भगवान रामचंद्र वासुदेव रूप होने के कारण इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं है। वे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। ये परम ऐश्वर्यवान हैं, अतः पत्नी विछोह के कारण उन्होंने ना तो कष्ट उठाए, ना ही उन्होंने अपनी पत्नी और लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव था, ये केवल लीला थी। सीता का त्याग किया, लक्ष्मण का त्याग किया। न वैसा आत्मा आत्मवताम सुहृतम सत्यस्त्रोक्याम भगवान वासुदेव न स्त्री कृतम कसमलमस्मवीत न लक्ष्मणम चापी विहा तुम अर्हती। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, बोलने की चातुरी, बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र के कारण कोई चाहकर भी रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता, उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम वनवासियों को, हनुमान जी कह रहे हैं, हम वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए और रूप रंग ना होते हुए भी अपने मित्रों के रूप में वो क्यों स्वीकार करते हैं? तो इन गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। न जन्म नु न महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि न कृते स्तोत्र हेतु तैयन सृष्टान अपनी नो मनो कथन सकार सख्य बत लक्ष्मणांग्रज। चाहे देवता हो या मनुष्य या पशु या पक्षी, प्रत्येक को भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। जिस पृथ्वी पर मनुष्य की लीला करते हैं उनकी पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निस्संदेह से रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। अब भारतवर्ष में भगवान है किस रूप में? नर नारायण के रूप में, और उनकी उपासना करते हैं कौन? नारद जी। उनका प्रणाम मंत्र है, मैं समस्त संतों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। ये भगवान आत्म संयमी है, आत्माराम है, झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं, निर्धनों के धन हैं, परम हंसों के गुरु हैं, सिद्धों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों में पुनः नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय प्रदानात्मन्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषिर्षभाय नर नारायणाय परम हंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपते नमो नम इति। अब उनका प्रार्थना मंत्र है, हे भगवान, आप जगत के सृष्टा पालक और संहारक हैं और मिथ्या अभिमान से मुक्त हैं। आपको भूख प्यास और थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। आप सब कुछ देखते हुए भी आपकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। ऐसे परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। कर्ता से सर्ग दिशु यो न बद्धते न हन्यते देह गतोपि दैहिक दृष्टो न दृग्यस्य गुणैर्विदूषते तस्मै नमो सत्यविवेक्त साक्षिणे। हे योगेश्वर, ब्रह्मा जी ने बतलाया है कि सभी योगी मृत्यु के समय आपके चरणों में अपना मन लगाकर भौतिक शरीर त्यागते हैं, यही उनकी योग सिद्धि है। इदम हि योगेश्वर योग नैपुणम हिरण्य गर्भो भगवान जगादयन यदंत काले तो निर्गुण ए मनो भक्त्यादधीतो जित दुष्करे वरहम। सामान्यतः संसारी लोग अपने भौतिक सुखों में लिप्त हैं, पत्नी संतान के विचारों में ही डूबे हैं और इस शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। यदि कृष्ण भक्त भी इसी प्रकार भयभीत हो तो फिर क्या लाभ हुआ? यथे गाम उसम के काम लंपटाम सुते सुधारे सुधने सुचिंतन संकेत विद्वान कुकले वराते यत्नाश्रम एवं केवलम। अतः हे प्रभु, हे अधोक्षस, कृपा करके हमें भक्ति को साधने की शक्ति दीजिए, जिससे हम अपने मन को आप में लगा सकें। आपकी माया के प्रभाव से हम इस शरीर तथा संसार में आ सकते हैं। आप हमें भक्ति का वर दीजिए जिससे ये आसक्ति दूर हो। तन्नः प्रभो तम कुकले वरार्पिताम तन्माया हम ममताम मधोक्ष जयम भिंद्याम ये न सुवयम सुदुर्भिधाम विदेह योगम तय न सुभावम इति। अब इलाबृत वर्ष में शिव जी पूजा करते हैं किसकी? भगवान संकर्षण की। उनका प्रणाम मंत्र है, हे भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं, अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अदृश्य रहते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नम इति। अब प्रार्थना मंत्र है, हे प्रभु, आप ही एकमात्र आराध्य हैं, आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप अपने भक्तों को नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले और संसार के चंगुलों से छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से अभक्तगण इस संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करें। भजे भजन्यारण पादे पंकजम भगत कृतनस्य परम परायणम भक्ते सुलम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भव भावमीश्वरम। अभी कुछ और भी श्लोक है, परंतु समय के अभाव में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में विशेष भक्त भगवान के विशेष रूप की पूजा करते हैं उसे हमने सुना। परीक्षित महाराज ने इन सभी स्थानों में जाकर कलयुग को दूर करने के लिए दिग्विजय की यात्रा की। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के।